شہزادی گلفام. کسی زمانے کی بات ہے، شہر سے دور ایک چھوٹے سے گاؤں میں اپنی بیوی اور بیٹی کے ساتھ ایک موچی رہتا تھا. غریب موچی شہر جانے کے لیے صبح سویرے گھر سے نکل جاتا اور رات ہو جانے کے بعد گھر واپس آتا. اپنی بیوی اور بیٹی سے بے حد محبت کرتا تھا. جب اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا تو بیچارہ موچی بہت ہی اداس رہنے لگا. گاؤں کے لوگ اسے سمجھانے آتے،
مرنا جینا انسان کے بس میں نہیں ہوتا ہے بھیا.
میاں، تم نے تو کھانا پینا بالکل چھوڑ دیا ہے، اس طرح تو بیمار پڑ جاؤ گے.
تم اپنے کو نہیں سنبھالو گے تو بیٹی گلفام کا کیا حال ہوگا میاں؟
ہاں، تمہارے علاوہ دنیا میں اس کا اب کون رہ گیا ہے بھائی؟
اپنی بیٹی کا نام سنتے ہی موچی بے چین ہو گیا.
میری بچی گلفام، میں تیری خاطر زندہ رہوں گا، میں ہنسوں گا، بولوں گا، تجھے اب اور تکلیف نہیں ہونے دوں گا میری بیٹی.
موچی نے آہستہ آہستہ اپنے کام میں دل لگانا شروع کر دیا. وہ پہلے کی طرح روز صبح سویرے شہر کے لیے نکل جاتا اور رات ہو جانے کے بعد گھر واپس آتا. ایک رات جب وہ گھر واپس آیا تو اس نے اپنی بیٹی گلفام کو بہت اداس پایا.
بیٹی گلفام، کیا بات ہے؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟
ٹھیک ہے بابا.
تو کچھ چھپا رہی ہے بیٹی، بتا کیا بات ہے؟
سارا دن مجھ سے گھر میں اکیلے نہیں رہا جاتا. امی تھی تو ہم ایک دوسرے کا دل بہلاتے رہتے تھے، مگر اب.
موچی نے جب یہ بات گاؤں والوں کو بتائی تو سب نے مل کر کہا،
بیٹی گلفام کی دیکھ بھال کے لیے ویسے تو گاؤں میں سب ہی لوگ ہیں، مگر
ایک جوان لڑکی کا سارا دن اکیلے رہنا اچھی بات تو نہیں.
میری مانو تو میاں، دوسری شادی کر لو.
نہیں نہیں، شادی میں نہیں کروں گا. ایک جوان لڑکی کا باپ ہو کر میں خود شادی کر لوں تو دنیا کیا کہے گی؟
دنیا کی سنو گے یا بیٹی کی بھلائی دیکھو گے؟
بیٹی کی بھلائی؟
ہاں بھائی، جوان لڑکی سے شادی کرنے کے لیے کس نے کہا؟ بھائی، کسی بیوہ سے شادی کر لو، ثواب بھی ملے گا اور گھر بھی بس جائے گا.
ہاں، میں تو کہتا ہوں مائی فاتو سے شادی کر لو، اس کی بھی ایک جوان لڑکی ہے رجو. بیٹی گلفام کو ایک بہن مل جائے گی اور تم کو ایک گھر والی.
کافی سوچ بچار کے بعد موچی نے گاؤں والوں کی بات ماننے کا فیصلہ کر لیا اور اس طرح مائی فاتو کو بالکل سیدھے سادھے طریقے سے بیاہ کر گھر لے آیا. موچی کو گلفام کی طرف سے اب اطمینان ہو چکا تھا، ساتھ میں کھیلنے والی ایک بہن ہے اور پیار کرنے والی ایک ماں. مگر یہاں تو معاملہ بالکل ہی الٹا تھا. بدصورت رجو نے گلفام کی پیاری پیاری بھولی بھالی شکل دیکھ کر ہی اس سے جلنا شروع کر دیا. وہ بات بات پر اس سے لڑتی جھگڑتی اور ہر کام میں اس کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتی رہتی.
ابا جی، ابا جی، یہ آلو کا سالن لیجئے، یہ دال بھی لیجئے نا، بہت مزے کی ہے.
واہ، واقعی بہت مزے کی ہیں دونوں چیزیں. کس نے پکائی ہیں؟
میں نے پکائی ہیں، اور کون پکائے گا؟ جھوٹ نہ بولو رجو بہن، تم تو سارا وقت اپنے بناؤ سنگھار میں لگی رہتی ہو. کھانا پکانا، گھر کے تمام کام تم کرتی ہو یا میں؟
اور بد مزاج فاتو صبح ہو یا شام بلا وجہ گلفام کو ڈانٹ ڈپٹ کرتی رہتی.
ارے گلفام کی بچی، کہاں مر گئی کمبخت؟
آئی ماں، ابھی آئی.
ہائے ہائے، تیرا ستیہ ناس و نام رات، اپنی نئی ساڑی دھونے کے لیے دیتی ہے جگہ جگہ سے پھاڑ ڈالنے کے لیے.
ماں جی، ساڑی تو بہت پرانی تھی، بالکل گلی ہوئی، پانی سے نکال کر نچوڑا ہی تھا کہ پھٹ گئی. میں کیا کروں؟
سوار چاہتی ہے، کہہ کرتی مجھ سے، اپنی غلطی نہیں مانتی، گڑبڑ کی کاٹ کر دوں گی تیری، تو جانتی نہیں ہے میں بالکل پسند نہیں کرتی.
غلطی ہو گئی ماں جی.
کھڑی کھڑی معافی کیا مانگ رہی ہے؟ چل جا اپنا کام کر، کام چور کہیں تھی.
اچھا ماں جی.
تو آ کے گندے برتن پڑے ان کو دھونے کے بعد ہاتھ خوب اچھی طرح صاف کر کے میری بیٹی رجو کے کپڑے بھی دھو دینا.
جی اچھا.
پورے گھر کی صفائی کرنے کے بعد جنگل سے لکڑیاں لے کر آنا اور پھر کھانا پکانا شروع کرنا، سمجھی؟
جی سمجھ گئی ماں.
अपनी सौतेली माँ और बहन का रवैया देखकर गुलफाम का दिल बहुत दुखता। उसको अपनी माँ याद आती तो किसी कोने में छुपकर दो चार आंसू बहा लेती। उसने मोची से कभी कोई शिकायत न की, बल्कि हर वक्त उन दोनों को खुश रखने की कोशिश करती रहती। एक दिन का जिक्र है, सर्दियों के दिन थे। खूब कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी, जबरदस्त बर्फबारी हो चुकी थी। सारा गांव और जंगल बर्फ में छुप गया था कि सुबह सवेरे फातो ने गुलफाम से कहा,
बेटी गुलफाम, हरी हरी कच्ची कच्ची बेरियां खाने को जी चाह रहा है मेरा।
जरूर माँ, जरूर, मैं आपको बेरियां जरूर खिलाऊंगी। बस जरा सर्दियां खत्म हो जाए, गर्मियां आने दीजिए, फिर मैं आपके लिए जंगल से ढेर सारी बेरियां लेकर आऊंगी। बहुत मजे की होती हैं।
पागल हो गई है, मुझे बेरियां आज चाहिए, अभी।
माँ जी, सारे जंगल में बर्फ पड़ी हुई है, बेरियां कहाँ से मिलेंगी?
मैं नहीं जानती, जहाँ से भी वो बेरियां लेकर आओ। और ये लो, रात की बची दो रोटियां रख लो, भूख लगे तो प्याज के साथ खा लेना, मगर खाली हाथ वापस ना आना, नहीं तो मैं उल्टा लटका दूंगी, समझी?
जी माँ जी। माँ जी, बाहर बहुत सर्दी है, कोई गर्म कपड़ा तो दे दीजिए।
गरम कपड़ा, बड़ी आई नवाब दादी। ले ये बिस्तर की चादर ओढ़ ले और दफे हो जाए यहाँ से।
गुलफाम के जाने के बाद रज्जो ने अपनी माँ से पूछा,
मगर अम्मी, इतनी सर्दी में ऐसे बेरियां मिलेंगी कहाँ से?
इसीलिए तो भेजा है, ताकि खाली हाथ वापस आए तो मैं अच्छी तरह दांत दपट कर सकूं। कमबख्त ऐसे अच्छे काम करती है कि डांटने का मौका ही नहीं देती, और जब तक मैं उसको डांट न लूं, मेरा तो खाना ही हजम नहीं होता।
या अल्लाह, कैसी सख्त सर्दी है, ऐसे में भेड़िया कहाँ से लाऊं? मेरे तो हाथ पांव बिल्कुल जम गए, अब तो चला भी नहीं जाता। अरे वो क्या, जंगल में ये झोपड़ी किसकी है? चिमनी से धुआं भी निकल रहा है, थोड़ी देर चलकर मैं आराम करती हूँ।
कौन है?
मैं हूँ गुलफाम, बाहर बहुत सर्दी है, मुझे अंदर आने दीजिए।
आओ बेटी, आओ, अंदर आ जाओ।
आपका आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
गुलफाम ने अंदर जाकर देखा कि यहाँ तीन छोटे छोटे बोने रहते हैं। तीनों ने अपना अपना तारुफ करवाया।
बेटी, मेरा नाम अपोलो है, मैं सबसे बड़ा भाई हूँ।
मैं कपोलो हूँ।
और मैं हूँ सबसे छोटा भाई टपोलो।
इधर आओ बेटी, गुलफाम इधर आओ। पहले तो आग के पास बैठकर अपने हाथ पर अच्छी तरह गर्म कर लो, फिर बातें करेंगे।
आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
अब बताओ बेटी, तुम इतनी सर्दी में घर से बाहर क्या लेने निकली हो?
मेरी अम्मी ने कच्ची कच्ची बेरियां मांगी है, वही ढूंढने निकली हूँ।
बेरियां तो बाद में तलाश कर लेना, पहले ये बताओ तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ है? हमें बड़ी भूख लग रही है।
जी हाँ, जरूर जरूर, ये लीजिए।
गुलफाम ने अपने हिस्से की दो रोटियों में से चार हिस्से बनाए और चारों ने आधी आधी रोटी प्याज के साथ खा ली।
वाह, आज तो रोटी और प्याज खाने का मजा ही आ गया भाई।
बेरियां लेकर आना तो दो चार हमें भी देती जाना।
बहुत अच्छा।
हाँ, जाने से पहले हमारा एक काम तो करती जाओ।
जरूर, बताइए।
पिछले दरवाजे के पास बहुत सारी बर्फ पड़ी हुई है, मैं झाड़ू लाता हूँ, तुम अगर उसको साफ कर दो तो बड़ी मेहरबानी होगी।
अरे इसमें मेहरबानी की क्या बात है, अभी कर देती हूँ।
अच्छा, ये लो झाड़ू।
और गुलफाम ने घर से बाहर जाकर दरवाजे पर पड़ी हुई बर्फ साफ करनी शुरू कर दी।
ये लड़की तो बहुत ही नेक तबीयत की है।
हाँ भाई, अपने हिस्से का खाना भी हमको खिला दिया।
हाँ, और अब बाहर जाकर बर्फ भी साफ कर रही है, हमें कुछ न कुछ इनाम जरूर देना चाहिए।
बिल्कुल बिल्कुल, मेरा इनाम यह है कि जंगल में इसे
ढेर सारी बेरियां मिल जाएं।
और मेरा इनाम ये है कि यहाँ से जाकर जब कभी ये बात करे इसके मुंह से फूल झड़े बल्कि हीरे जवाहरात गिरे।
हाँ, और मेरा इनाम ये है कि किसी बहुत ही खूबसूरत शहजादे से इसकी शादी हो जाए और ये शहजादी गुलफाम बन जाए।
बोने बाबा अपोलो कपोलो टपोलो, ये देखिए कितनी सारी बेरियां जमा कर लाई हूँ, इसमें से आधी आप लोगों के लिए रख दूँ?
नहीं बेटी नहीं, हम तो मजाक कर रहे थे।
तुम सारी बेरियां घर ले जाओ।
अल्लाह तुम्हें खुश रखे, जाओ। खुदा हाफिज।
खुदा हाफिज बने बाबा। खुदा हाफिज।
खुदा हाफिज।
आ गई नवाबजादी, कहाँ रह गई थी इतनी देर? मेरी बेरियां भी लाई है या खाली हाथी चली आ रही है?
गुलफाम ने अंदर जाकर टोकरी पर से कपड़ा हटाया और खुश होकर कहा,
ये देखिए कितनी सारी बेरियां लाई है आपके लिए।
तेरे मुंह से झूले जवाहरात कैसे गिर रहे
हैं? मुझे नहीं मालूम माँ जी।
दोनों माँ बेटियों ने जो गुलफाम का ये हाल देखा तो जल भुनकर राख हो गईं। गुलफाम ने जब पूरी कहानी उनको सुनाई तो दूसरे ही दिन फातो ने अपनी बेटी रज्जो को भी जंगल में भेजने का फैसला कर लिया।
ले बेटी रज्जो, गरम गरम चार पराठे, आलू की भुजिया, अंडे का आमलेट, मक्खन और ये जेली, सब दोनों के साथ मिलकर खाना। खूब अच्छी तरह उनकी खिदमत करना, जो कहें वही करना, उनको अच्छी तरह खुश कर देना, समझे?
समझ गई अम्मी। हीरों के लिए आज मुझे भी काम करना पड़ गया।
बेटी सच्ची बात है, शक्ल तो तेरी गुलफाम जैसी है नहीं, हीरे जवाहरात ही देखकर तुझको रिश्ता मिलेगा।
अच्छा अम्मी अब मैं जाऊँ?
हाँ बेटी जा, ले कंबल अच्छी तरह से लपेट ले, कहीं सर्दी न लग जाए।
अच्छा अम्मी, खुदा हाफिज।
कौन है?
तो मेरा नाम रज्जो है, दरवाजा खोलिए जल्दी कीजिए ना।
ओ, कौन हो बेटी, इतनी सर्दी में क्या कर रही हो? आओ अंदर आ जाओ।
मैं तो कभी इस मौसम में घर से ना निकलती अगर हीरों की बात ना होती। जरा हटिए, मुझे आग के पास बैठने दीजिए, दरवाजा बंद कर दीजिए।
भाई अपोलो, ये कैसी लड़की है, ना शुक्रिया ना कुछ, बस सीधी अंदर घुस आई।
आप लोगों को भूख लग रही होगी, मैं आपके लिए खाना निकालूं?
अभी तो हमें भूख नहीं है।
भूख नहीं है? आप लोग ये पराठे, भुजिया, ऑमलेट, मक्खन और जेली नहीं खाएंगे तो मुझे दुआ कैसे देंगे? फिर मेरे आने का फायदा क्या हुआ? खाना आपको खाना पड़ेगा।
बोलो, बड़ी मतलबी लड़की है, अपने मतलब के लिए सब कुछ कर रही है।
अच्छा भाई, तुम जिद करती हो तो निकालो खाना।
हाँ, अभी निकालती हूँ, अभी निकालती। ये ली, सबके हिस्से का एक एक पराठा, ये सबके हिस्से की भुजिया, ये ऑमलेट, ये मक्खन और ये रही जेली। हो जाइए शुरू।
आप लोग तो बहुत आहिस्ता आहिस्ता खाते हैं, भूख भी कम लगती होगी। कद छोटा है ना, बने जो हुए।
भाई टपोलो, ये लड़की तो बदतमीज भी है।
मुझे भूख बहुत लगती है, आप लोगों के हिस्से में से आधा आधा पराठा ले लूं?
अच्छा ले लो
भाई, अब रूखा पराठा कैसे खाऊं? ये बाकी चीजें भी दे दीजिए, मुझे तो बहुत भूख लग रही है।
भाई अपोलो, बड़ी लालची लड़की निकली, हम सबके हिस्से का खाना भी खा गई।
वाह मजा आ गया। अब बताइए झाड़ू कहाँ है? बर्फ भी तो साफ करनी है।
बर्फ भी साफ करोगी?
भाई आप लोगों के तो हाथ छोटे छोटे हैं, बर्फ साफ होती नहीं होगी। मैं साफ करूंगी तो आप लोग खुश हो जाएंगे, फिर मुझे दुआएं देंगे और फिर मेरे मुंह से भी उस कलमोई गुलफाम की तरह हीरे निकलने लगेंगे। सिर्फ उसके मुंह से क्यों निकले चुड़ैल कहीं की?
भाई अपोलो, ये लड़की तो दूसरों से जलती भी है।
भाई लाइए ना, कहाँ है झाड़ू? आप लोग हर काम में बहुत देर करते हैं।
ये लो।
लाओ, मैं अभी सारी बर्फ साफ करके आती हूँ।
फिर जंगल से बेरियां भी तो लानी हैं। कमबख्त बोनों की खिदमत मेरी ही किस्मत में लिखी थी। मुझे उनकी शक्ल देखकर घिन आती है। वैसे तो मेंढकों की तरह फुदकते हैं, पर अपना काम नहीं कर सकते।
मैं तो इस लड़की को सजा देना चाहता हूँ।
मैं भी।
और मैं भी।
मेरी सजा ये है कि सारे जंगल में मारी मारी फिरती रहे और इसे बेरियां न मिले।
और मेरी सजा है कि ठंडे पानी में डुबकियां लगे।
और मेरी सजा ये है कि जब घर पहुंचकर ये बात करे तो इसके मुंह से मेंढक निकले।
ये तो बहुत सख्त सजा हो गई भाई टपोलो।
चलिए आपकी खातिर इतनी रियायत कर देता हूँ कि जब इसे अपनी गलती का एहसास हो जाए, अपनी खुदगर्जी खत्म कर दे, दूसरों से जलना छोड़ दे, तो मुंह से मेंढक निकलना बंद हो जाएंगे।
ये ठीक है।
हाँ, ये ठीक है।
सुबह की गई हुई थी, शाम होने को आई। पता नहीं कहाँ रह गई मेरी बच्ची रज्जो। आ गई शायद। आ गई मेरी बेटी। बोने मिले थे?
बोने तो मिले थे, लेकिन बेरियां नहीं मिली।
ये क्या तेरे मुंह से? मेंढक। मैं तबाह हो गई, बर्बाद हो गई। आ मेरी रज्जो, अब तेरा क्या होगा? अरे इतने सारे मेंढक देखकर कोई तुझसे शादी नहीं करेगा। हाय हाय, जिस तरह गुलफाम ने उनकी खिदमत की थी, तूने उस तरह क्यों न की मेरी बेटी?
बिल्कुल वैसे ही तो की थी अम्मी।
हाय, तो फिर तेरे नसीब में मेंढक क्यों आ गए? ये जरूर उसी कमबख्त की चाल होगी। गुलफाम, ओ गुलफाम, कहाँ मर गई नामराद?
जी माँ जी।
माँ जी की बच्ची? बता तूने बोनों को क्या पट्टी पढ़ाई थी?
मैं तो उस दिन के बाद फिर उनसे मिली भी नहीं। माँ जी
मिली नहीं, उनसे कुछ कहा नहीं, तो फिर मेरी बेटी का यह हशर कैसे हुआ? क्यों हुआ? जा रजो को लेकर उन बोनों के यहाँ अभी जा और पूछे क्या मजाक। एक बहन को हीरे जवाहरात और दूसरी बहन को मेंढक। और सुन, अगर मेरी बेटी ठीक नहीं हुई तो मैं तुझे जिंदा दफन कर दूंगी, समझी? जा मेरी बेटी, जा इस कमबख्त के साथ जा।
अच्छा अम्मी।
तेज हवाएं चलने लगी तो ये समझकर कि कहीं तूफान ना आ जाए, दोनों ने तेज तेज चलना शुरू कर दिया। अभी थोड़ी दूर गई थी कि बर्फानी रीछ की आवाज आई।
बानो का घर तो इधर है, तुम उधर कहाँ भागी जा रही हो?
मैं जान लू मैं जान तुम्हारे बाने, पहले जान तो बचा लो।
अरे रज्जो आगे ना जाना, झील है, गिर जाओगी। उसको तो तैरना भी नहीं आता। हाथ पैर चला दे रहा हूँ रज्जो, अपना सर नीचे मर चुका, मैं आ रही हूँ।
बचाओ,
हाथ बढ़ा दो, हाथ बढ़ा दो।
मेरे हाथ जम गए, कैसे बढ़ाओ?
ओहो, अच्छा अच्छा, मैं आपका हाथ बढ़ाती हूँ, दो से पकड़ लेना, खींचना मत, नहीं तो मैं भी संभल नहीं पाऊंगी।
अच्छा लाओ बढ़ाओ
रज्जो, रज्जो पकड़ो मेरा हाथ।
बीच की आवाज सुनते ही रज्जो डर गई और उसने गुलफाम का बढ़ा हुआ हाथ पकड़कर खींच लिया। उनकी चीखें सुनकर एक शहजादा जो इधर से गुजर रहा था झील के करीब आया और उसने जब लड़कियों को डूबते हुए देखा तो उनकी तरफ बढ़ना ही चाहता था कि उसकी नजर रीछ पर पड़ गई। शहजादे ने फौरन दो तीर निकाले और देखते ही देखते दोनों तीर रीछ के सीने में उतार दिए। रीछ के मरने के बाद शहजादा भागकर झील के पास गया।
नहीं नहीं, आप लोग घबराइए नहीं, जहाँ है वहीं रहिए। हाथ बढ़ाइए, हाथ बढ़ाइए, हिम्मत कीजिए,
काफी देर के बाद शहजादा इन दोनों को झील से निकालने में कामयाब हो गया और उनको झील के किनारे जमीन पर लिटा दिया। शहजादे ने गुलफाम को अब जो करीब से देखा तो उसकी खूबसूरती देखकर दिलो जान से उस पर फिदा हो गया।
आप लोग कहाँ रहती हैं? चलिए मैं आपको घर पहुँचा दूँ। अरे ये तो बेहोश हो गई है।
बेहोश?
अरे ये क्या मेंढक?
अरे मेंढक भूल जाइए, आप गुलफाम को देखिए।
इनको सर्दी लग गई है, गर्माई की सख्त जरूरत है।
नजदीक बोनों की झोपड़ी है, वहीं चलते हैं।
चलिए चलिए आइए।
वहाँ नहीं, यहाँ आग के पास लाओ, इधर।
और तौलिया लाकर सर से पानी पोंछो।
जल्दी से एक कटोरा गरम दूध लाओ।
पानी मुझे दीजिए, मुंह पर छींटे मारता हूँ। नहीं नहीं
गुलफाम, तुम्हें क्या हो गया मेरी बहन?
आंखें खोलिए, आंखें खोलिए, खोलिए खोलिए आंखें।
मैं कहाँ हूँ? बच्चों 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 बच गए।
मुझे माफ कर दो मेरी बहन, मैंने तुम्हारे साथ कैसी कैसी ज्यादतियाँ की, कितनी तकलीफें दी, मगर तुमने बदला लेने के बजाय आज मेरी जान बचाई। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो
भाई। जब बोलो अब तो माफ कर दो।
अरे आपके वो मेंढक कहाँ गए?
गुलफाम गुलफाम देखो मेंढक खत्म हो गए, मेंढक खत्म हो गए। या अल्लाह तेरा शुक्र है।
तमाम लोग खुशियां मना रहे थे और तीनों बोने एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे।
चलिए मैं आप दोनों को घर छोड़ाऊं।
आप हमारी झोपड़ी में कहाँ जाएंगे शहजादे साहब? हम आपके पहले ही एहसान मंद हैं।
गैरों की तरह बातें न कीजिए, रात हो रही है, आप लोग अकेले कैसे जाएंगे? वैसे भी मैं आपके वाली साहब से मिलना चाहता हूँ।
जी बाबा से? चलिए।
शहजादे की बहादुरी और खूबसूरती देखकर गुलफाम भी उसे पसंद करने लगी थी। वो इनको लेकर घर आई, बाबा से मिलवाया और सारी कहानी सुनाई। रज्जो ने जब फातो को बताया कि किस तरह गुलफाम ने उसकी जान बचाई तो फातो ने गुलफाम से माफी मांगी।
मैंने तुझे बड़ी तकलीफें दी गुलफाम, मेरी बच्ची अब तू भी अपना दिल मेरी तरफ से साफ कर ले।
मोची बाबा ने शहजादे का रिश्ता मंजूर कर लिया और फिर वो सब के सब शहजादे के साथ उसके महल चले गए, जहाँ चंद दिनों के बाद शहजादे की शादी गुलफाम से हो गयी। वो शहजादी गुलफाम बन गई और इस तरह तमाम लोग हंसी खुशी जिंदगी के दिन गुजारने लगे।
पहली पूजो ना, एक पहली पूजो।